काम करने वाले सुना
ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी।
श्रीमद्भागवत महापुराण से पाठ सप्तम स्कंद सप्तम अध्याय श्री प्रह्लाद जी के शिक्षा। तो कल हम चर्चा कर रहे थे सुबह कि श्री प्रह्लाद ने अपने सहपाठियों को किस प्रकार बहुत कम समय में, यही कहते हैं सर आ गए ना, उनका आसन भी आसन
मीतम च सारम च वाचो ही बाग्मिता। बाग्मिता,
बाग्मिता समझते किसको कहते हैं? पांडित्यता, कोई वास्तविक मोरल। पांडित्य मोरल मन वास्तविक कोई जानकार है, ज्ञानी है, उसका परिचय कैसे प्राप्त होता है? बोलते मीतम च ना, इसको बोली से, बोली से कैसे पता होता? मीतम च सारम च वाचो ही वाग्मिता, ज्यादा बोलेगा नहीं, कम। मीत मतलब बहुत कम, सटकट, थोड़ा सा बोलता है, लेकिन जो थोड़ा सा बोलता है वो केवल सार ही बोलता है। इस प्रकार का वाच जो वचन बोलता है वही वाग्मी है, वाग्मिता। मीतम च सारम च वाचो ही वाग्मिता। तो ठीक इसी प्रकार प्रह्लाद महाराज ने, उनके पास केवल यही समय था, अब आके क्लास शुरू हो जाए, बीच के जो रिक्रेशन समय था उसी को अवलंबन करके उन्होंने, और उनके श्रद्धा को कि इसी समय सब बालक सरल है, उनका अंदर कोई कंटामिनेशन नहीं है, और दे आर वेरी मच फेथफुल टू मी टोटली, व्हाट एवर आई से दे विल फॉलो, इतने समर्पित मेरे प्रति है, विश्वास रखे हैं। इस विश्वास समर्पण को फायदा उठाकर बोले अब भी डाल देना चाहिए इमीडिएट, इतने भारी ज्ञान जिनको हम लोग सोच भी नहीं सकते, ये आत्म अनात्म की भिन्नता, आत्मज्ञान, और सब कुछ दे दिए। वो शिक्षा कलाम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार उन्होंने सबसे पहले बोले उनको क्या खेलने जाएंगे आप लोग, ये शरीर मिला खेलने के लिए, कितने दिन का रहेगा ये, है ना? नहीं, शुरुआत इसी से करते हैं, फिर मनुष्य जीवन का अवधि का एक गणित सिखाते हैं उनको, बताते हैं थोड़ा सा मात्र बच रहा है उसको इसी करके गवाएगा, गंभीर कर देते हैं उनको। गंभीर बनाने के बाद फिर बोलते हैं कि आपको पता नहीं है शरीर आप नहीं है, आप आत्मा है, आत्मा का लक्षण बताते हैं, द्वादश लक्षण युक्त आत्मा, शरीर का विनाशशीलता, आत्मा का अविनाशी लक्षण को बता करके फिर बताते हैं कि आप शायद आश्चर्य होते हैं कि आत्मा फात्मा बोलता हूँ, आत्मा है कि हम तक कभी देखे नहीं, जाने नहीं, सुने नहीं, पकड़े नहीं। तो फिर बताते हैं जथा स्वर्ण ग्रावकार, जैसे खान से सोने को पत्थर से निकाल कर कोई प्रयास को प्रक्रिया करना पड़ता है, इसी प्रक्रिया से इस शरीर में आत्मा है। आप अन्य भाव में, व्यतिरेक भाव में कोई प्रयास कोई उपाय के द्वारा जान सकते हैं, और उपाय बता दिए। इस प्रकार के बता करके अंत में बताते हैं कि फिर लक्ष्य क्या होना चाहिए, आत्मा को जाने किस लिए जाने, जाने क्या करूँ, क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो लक्ष्य कहते हैं कि ये जो गलती हम किए, इस शरीर में आकर के जन्म मृत्यु जरा व्याधि ऐसे दुख समस्या दोष में भरे पड़े हैं, उससे निकल जाना। कैसे निकले? बोले कर्म बीज निर्हरणाम, जो कर्म बीज है उसको भूंज देना चाहिए, जला देना चाहिए, तब फिर कभी उगेगा ही नहीं, अंकुरित नहीं होगा। बोले कर्म बीज निर्धारण कैसे, कर्म खत्म हो जाएगा, कर्म बीज जल जाएगा कैसे? तो बोलते हैं कर्म बीज जलाने के लिए बड़े बड़े महापुरुषगण ऋषि मुनि शास्त्र उपनिषद में हजारों हजारों उपाय बता रखे हैं। वो अपने अपने अनुभव से अपने अपने साधन से बता रखे हैं, लेकिन ये सकल साधन से सर्वश्रेष्ठ सहज सरल उपाय तो हुई है जो साक्षात भगवान स्वयं कहें, जो ये कर्म और कैवल्य दोनों का स्रोत है। उन्होंने स्वयं अपने श्रीमुख से जो उपाय बताए उससे बढ़कर मोस्ट परफेक्ट सिंपल इजी टू द पॉइंट मेथड और कुछ हो नहीं सकता। जितने उपाय, बोले वो उपाय कैसे? बोले उपाय कुछ नहीं, भगवान स्वयं अपने मुख से कहे हैं कि ऐसा एक उपाय है। उन्होंने कैसे उसे श्रेष्ठता पता चलेगा, सबसे बढ़िया है, सरल है? बोले वो जो उपाय सब करते हैं, इस उपाय करके देखो, इस उपाय को जब करेंगे इससे बहुत जल्दी श्री गोविंद के चरण में आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा। भगवत पदे रति, जिस उपाय से जल्दी उत्पन्न हो जाए वही भगवत पद लाभ का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। तो बोलते फिर ये कौन सा है उपाय? बोलते भगवान अपने श्रीमुख से स्वयं कहें, अनेक शास्त्र में अनेक बार कहें, भक्त्या हम एकया ग्राह्यम, केवल भक्ति के द्वारा में ग्राह्य होते, जावान जस्मि प्रत्यो ततो मान भक्त, केवल भक्ति के द्वारा है, केवल भक्ति के द्वारा, केवल भक्ति के द्वारा हमें पाया जाता हूँ, और कोई उपाय नहीं। बड़े जल्दी से भगवान स्वयं श्रीमुख से बात कहे हैं, यही भगवत धर्म है। भगवत धर्म के बारे में कहते हैं जो भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से भोले भाले सरल मनुष्य के लिए, मूर्ख मनुष्य के लिए, जो बड़े शॉर्टकट बोले तू भोले भाले सरल मूर्ख तू क्या कर सकता, यही करो, तो ये जो सहज उपाय बता दिए वही भागवत धर्म है। भगवान ने स्वयं इस धर्म का अपने मुख से बता दिया भजन को, तो उसकी करो। तो इसको बता करके आगे बताते हैं कि तो कैसे करूं, क्या क्या कोई जो प्रक्रिया बताए, क्या प्रक्रिया है इस भक्ति में, तो प्रक्रिया में बताते हैं ये श्लोक। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साध भक्तानां ईश्वराराधनेन च। श्लोक नंबर 30 अनुवाद से। श्रद्धया तत्कथायांच कीर्तने गुणकर्मणां तत्पादाम्बूरह ध्यानान् तल्लिंगे यक्षणारा अर्हादिभिः। ये दो श्लोक में ये प्रक्रिया बताते हैं, जैसे मैं काल मथा दूध में घी है आपको दिखाई नहीं पड़ता, हाथ डालकर ढूंढते नहीं मिलता, लेकिन इसको प्रक्रिया करो, दही जमाओ, मंथन करो, माखन निकालो, गर्म करो, घी निकल पड़ेगा उसी से, कोई अलग चीज नहीं। ठीक इसी प्रकार आप में ये जो प्रक्रिया करो इसमें हो जाता हूँ। क्या क्या प्रक्रिया? सब एक एक गुरु शुश्रूषया भक्त्या, सबसे पहले भक्ति सामंत सिंधु में भक्ति के आचार्य रूप गोस्वामी ही कहते हैं, भक्ति का 64 अंग वर्णन किए हैं अलग अलग, उसमें महत्वपूर्ण अंग, महाअंग, विशिष्ट अंग, कई प्रकार से है, लेकिन जितने प्रकार अंग है, सबसे प्रथम अंग क्या है? आदो गुरुपादाश्रयम, ये सबसे सबसे प्रथम अंग है। आदो सबसे पहले गुरुपादाश्रय, तो तत् शिक्षणादि भी, तो फिर शिक्षा ग्रहण करना। गुरुपाद शब्द का महत्व मैं काल आपको बताया था, जैसे कोई बीज के ऊपर जो छिलका है प्रोटेक्शन, वही ये आश्रय, इसी को आश्रय द्वित्व कहते हैं। वो छिलका जब ना रहे, बीज के अंदर सारे प्रॉपर्टी होते हुए भी वो अंकुरित नहीं हो सकता, फल फूल हो नहीं सकता, लेकिन वो छिलका पड़ा रहेगा। जब अंकुर होगा छिलका को छोड़ करके आगे बढ़ जाएगा पेड़, लेकिन वो छिलका होना जरूरी है बिगिनिंग में, यही आश्रय है गुरुवास। इसलिए आदो बिगिनिंग में वही हो। तो यहाँ भी प्रहलाद महाराज इस बात को कहते हैं, गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलक्षण सर्वलब्ध अर्पणान च। मनुष्य को चाहिए कि गुरु स्वीकार, प्रामाणिक गुरु स्वीकार करना चाहिए और अंततः भक्ति तथा श्रद्धा से उसकी सेवा करनी चाहिए। पहले प्रामाणिक गुरु स्वीकार करे और भक्ति और श्रद्धा से उनकी सेवा करे। उसके पास जो कुछ भी हो उसे गुरु को अर्पित करना चाहिए, तद लब्ध अर्पणान च। और संत पुरुष तथा भक्तों की संगति में भगवान की पूजा करनी चाहिए, श्रद्धापूर्वक भगवान के जस का श्रवण करना चाहिए, भगवान के दिव्य गुणों तथा कार्यकलाप का यशोगान करना चाहिए, सदैव भगवान के चरण कमल का ध्यान करना चाहिए तथा शास्त्र एवं गुरु के आदेश अनुसार भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करनी चाहिए। इसको आचार्य पाद कहते हैं, गुरु शुश्रूषा भक्ति समस्त लब्ध वस्तु समर्पण। एक एक पॉइंट बताते हैं। पहला पॉइंट है गुरु की शुश्रूषा, दूसरा है भक्ति, तीसरा है समस्त लब्ध वस्तु समर्पण, चौथा है साधु भक्त वृंदेर संसर्गम, जो उनका संग, बाद में भगवान का आराधना, भगवत कथा में श्रद्धा, तदीय गुणकर्म कीर्तन, उनका नाम गुण के कीर्तन भगवान का, और भगवान के पाद पद्म के ध्यान, और उनके श्री मूर्ति समूह का दर्शन और पूजा। टोटल इतना है प्रक्रिया। अब लिखना चाहिए लिख सकते हैं, दोबारा पढ़ लेता हूँ। चक्रोत्पाद लिस्ट करके बताए कि क्या प्रक्रिया से हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। सबसे पहले है गुरु के ग्रहण और उनके शुश्रूषा, दूसरा है भक्ति, उसके बाद समस्त प्रकार लब्ध वस्तु के समर्पण, उसके बाद साधु भक्त वृंदेर संग, श्री भगवान की आराधना, उसके बाद भगवत कथा में रुचि, फिर श्री भगवान के नाम गुण आदि के कीर्तन, और उनके भगवान के पाद पद्म के ध्यान, और उनके श्री मूर्ति के दर्शन और पूजा। इतना ही करना है। तो शुभ बोलते हैं कि धर्मस्य तत्त्वम ज्ञान इति, बोलते हैं धर्म के तत्व और ज्ञान, ये दो बात को प्रहलाद जी ने बताते हैं इस श्लोक में, ये दो श्लोक में। ये उपक्रम तन्मध्य ज्ञान, ज्ञान को बोलकर बोलते हैं धर्म तत्व जो भक्ति योग है उसको द्योतक करके पूर्वोक्त जत पदवाच्य, वही भक्ति समूह का, भक्ति समूह गुरु शुश्रूषा इत्यादि इत्यादि, ये सब है, ये क्रिया सब है। तो उसमें बोलते हैं कि जो साधु संघ उसको थोड़ा ज़्यादा स्टूडेंट कहे हैं कि क्या रहस्य है। बोलते साधु भक्तानां संगेन, उसका अर्थात अनेक ऐसे भक्त हो, साधु का उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिए, साधु भक्ता के संगे ना, साधु बोलते सदाचार परायण जे सकल भक्तगण। बोलते भक्त का संग करना, लेकिन भक्त संग ना लेके साधु भक्त क्यों लिखे? चक्रवर्ती एक प्रश्न उठाते हैं। बोलते भक्त संग तो सब बोलते हैं, लेकिन यहाँ प्रहलाद जी ने साधु भक्त संगा नाम ये बात क्यों कहे? एक और वार्ड क्यों जोड़ दिए उसमें? तो उसी को खोल कर बोलते हैं चक्रोद्गार, बोलते साधु भक्त भक्तानां संगे न साधु बोलिते सदाचार परायण जे सकल भक्तगण तहादेर संगेर द्वारा। बोलते भक्त तो सब होते हैं, लेकिन कई भक्त होते हैं असदाचारी, भक्ति करते हैं जब करते हैं सेवा करते हैं लेकिन बड़े असदाचारी, और कुछ भक्त हैं सब करते हैं बड़े सदाचारी, तो उनमें से ढूंढना पड़ेगा। बोलते उनमें से सारे तो भक्त हैं, दोनों दोनों तिलक करते हैं, मंदिर में रहते हैं, ड्रेस पहनते हैं करते हैं, लेकिन एक बदमाशी है थोड़ा स्वभाव और एक स्वभाव अच्छा है, चंचल स्वभाव, चंचल स्वभाव। बोले उनमें से दोनों को भक्त के रूप में तो मानते हैं, लेकिन उनमें से जो साधु स्वभाव वाली है सदाचार परायण जो है उन्हीं का संग करना, इसलिए बोलते हैं साधु बोलिते सदाचार परायण जे सकल भक्तगण तहादर संगर द्वारा। बोलते फिर उसको बोल इसको बोल तुरंत बोलते इहार द्वारा दुराचार विशिष्ट भक्तगण सभ्य वंदनीय एवं दर्शनीय किंतु संगलाभर निमित्त तहारा ग्रहणीय नहेन। समझ में क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि अगर मैं कह दिया कि जो सदाचार परायण जो स्थिरमति ऐसे भक्तों को सुनकर उनके संग करो, उसका मतलब ये नहीं जो भक्त लोग असदाचार परायण है थोड़ा चंचल बुद्धि है उनको छोड़ दो, उनको देखो ही ना ना, बोले उसमें भक्ति नाश हो जाएगी, उसमें भी खबरदार। बोलते वो भी भक्त है, भले असदाचारी है, भले चंचलमति है, भले दुष्ट स्वभाव, लेकिन फिर भी भक्त है। बोले फिर उनको साथ क्या करूं इसे ना, उनको उनको क्या क्या करना है बताते हैं उनके लिए। बोले उनके लिए साधु बोलते सदाचार प्राण जी सकल भक्तगण तादर संग द्वारा इहार द्वारा, बोले इनके द्वारा इस उपाय के द्वारा दुराचार विशिष्ट भक्तगण, जो भक्तगण वो दुराचार कर ही रहे हैं अभी भी भक्ति के आड़ में भी करते हैं बदमाशी, दुराचार विशिष्ट भक्तगणे सेव्य उनके सेवा करना चाहिए, बोले कौन काम करो करना चाहिए, उनके सेवा करना चाहिए सेव्य, वंदनीय उनको प्रणाम आदि करना चाहिए, वंदना भी करना चाहिए क्योंकि भक्त है भले दुराचारी, वो सेव्य है वंदनीय है एवं दर्शनीय है, उनको दर्शन करना चाहिए, हाँ आए हैं चलो दिख रहे आते मिल कर आते हैं, उनको सेवा भी करो प्रणाम आदि वंदना आदि करो, किंतु संगलाभर निमित्त नहीं उनका संग मत करो, वही बोलवा रहे थे प्रणाम ठोकर वापस आ गए। संगलाभ संगलाभ केवल किसका करना चाहिए? सदाचार्य, ये ध्यान रखिए चक्रवर्ती ये पॉइंट को विशेष करके निकालो। बोले बाकी तो सब समझ लेते हैं, बोले इन सारे उपाय से भगवान के गुरु का शुश्रूषा कैसे करें, श्री मूर्ति का सेवा कैसा करें, भगवान की पद के आरंभ जितने सब पढ़ा ये सब अपने आप को जानते हैं करना, जानते नहीं ना कैसे पता चलेगा किसके साथ संगे से ना। बोलते सारे उपाय से दी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है साधु भक्त संगे ना, बोले ये सबसे इंपोर्टेंट क्योंकि इसी से सब कुछ पता चलेगा आपको। लेकिन उनमें भी भक्त तो कई प्रकार होते हैं, बोलना नहीं मैं कई भक्त बड़ी आप रायपुर इसका बम्बे हमारे जो भेड़ पुजारी थे पहले जानते ना उनको, अभी संन्यास लिए हैं प्रॉपर डिसाइपल, क्या नाम भूल जाता हूँ उनका, रायपुर मंदिर के प्रेसिडेंट अभी जो मैंने कई है इसे सिद्धार्थ प्रभु सिद्धार्थ प्रभु सिद्धार्थ स्वामी सिद्धार्थ प्रभु अभी गुरु भी हैं संन्यासी है, लेकिन पूजा में भगवान को जब तक हेड पूजा कर रहते हैं इतने नीट एंड क्लीन, कोई मंदिर का पास चला जाएगा उनका भक्ति विद्युत हो जाएगा, क्या मेंटेन करके रखेंगे स्टैंडर्ड वर्शिपिंग स्टैंडर्ड क्लीनलेस स्टैंडर्ड भोग स्टैंडर्ड टाइमिंग, लेकिन वज्र है थोड़ा सा इधर उधर करो जूता मार के निकाल देंगे, इतने कठोर हृदय है घाली देंगे डांटेंगे इसी भाषा कहेंगे कटु तो भक्त रह जाए, कई भक्त तो भक्ति छोड़ के भाग जाते हैं बिजली की तरह शक मारेंगे, उनका स्वभाव क्या करें, अभी भी इतने बड़े भारी मंदिर अकेले बैठे कोई उनके पास टिक नहीं सकता क्या करे बेचारे है ना नहीं? तो इसी प्रकार लेकिन वही भक्त है स्वभाव उनका भक्ति भावों के गुण है लेकिन है उनका स्वभाव ऐसा है कठोर क्या करे, तो ऐसे अनेक भक्त होते हैं। तो फिर उनके साथ अगर नहीं रहेंगे तो इस प्रकार जो क्लीनलेस उस कैसे सीखेंगे, जो उनका साथ रहकर सेवा किया वो तो जानता है, वो कहीं भी पुजारी में चले जाए तो उसका तो लोग बड़ाई करेंगे, हाँ तो पुजारी है पक्का। और जो पुजारी भी है सारे कचरा पोछा डाल कर यहीं फेंक दे, ये करके वहीं डाल दे, उनका यहाँ नो कहीं टिट बिट नहीं रहेगा कुछ भी कचड़ा। अल्टर के अंदर घुसो तो टिप टप क्लीननेस रहना चाहिए। और अल्टर अगर हमेशा ये अगरबत्ती जलाए, ये नाचिस मारे फेंको, ये करो अभिषेक करो, बहुत सारे कचड़ा करने का हमेशा सुजोग मिलता है। हाँ अल्टर के अंदर सारे चूहा ये वो ये जो क्या बोलते हैं कॉकरोच सब घूमते रहते हैं, उनका अल्टर में नेवर। इससे टिटबिट कोई छोटा सा छिलका भी को डाल नहीं सकते। माचिस मार के उसको ना यहाँ क्यों फेंका, उसको यहाँ रखो उठा के लेकर फेंकना। माचिस की तिल्ली को भी इतने पर्टिकुलर है। तो आप लोग तो अल्टर में काम जानते हैं, हमारे यही उठ कर फिर यही सकते यही उनका हाथ बगाया वो बात हाथ पर धोकर गाओ, ऐसे नहीं कर सकते, इतने पर्टिकुलर है। तो जो उनके संग नहीं कर गया इस प्रकार कैसे सीखेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि उनको वंदनीय है, दर्शनीय है, सेव्य है, लेकिन उनके संग नहीं लेना उनसे सीख सीख करके झाड़ जोड़ के चलाना संग खबर करना सदाचार सुने इसको साधु संग लेना इसी बात। बाकी सब उपाय उनके द्वारा सीखा होगा। उसके बाद बोलते हैं हरि सर्वेषु भूतेषु भगवान अस्त ईश्वर इति भूतानि मनसा कामस्ते साधु मानयेत। बोलते हैं मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके अंतर्जामी प्रतिनिधि स्वरूप परमात्मा को सदैव स्मरण करे, जो प्रत्येक जीव के अंतकरण में स्थित है। इस प्रकार उसे जीव की स्थिति या स्वरूप के अनुसार प्रत्येक जीव का आदर करना चाहिए। बोलते हैं कि सभी को सम्मान करना सीखना चाहिए। क्यों सम्मान करूं? ये विरोधी मुझे गाली देता है, जब भी देखता हूं गाली देता है, हमेशा मुझे डांटता है, मेरा तो शत्रु है, मैं इसको सहन नहीं कर सकता हूं। बोले हाँ वो है, आप उसको देख नहीं सकता, आपके बड़ा विरोधी आपको ईर्ष्या करता है, हिंसा करता है, वो तो है, लेकिन वही ईर्ष्या परायण हिंसा परायण व्यक्ति के हृदय में भी तुम्हारे आराध्य ईश्वर हरि ही बैठे हुए हैं। खल में सबसे बड़ा सर्प को मानते हैं, नहीं खल सर्प है, सर्पान सर्प से खल और खतरनाक है, क्योंकि सर्प तो एक बार दंशन करता है वो बार बार करेगा खल नहीं। तो खल है व्यक्ति सर्प आदि ईर्षा प्राण हिंसा प्राण व्यक्ति के, क्योंकि जीव है, उनके हृदय में भी परमात्मा रूप में हमारे आराध्य श्री भगवान बैठे हैं, इसी माने से उनको प्रणाम करना चाहिए। मैं उनको प्रणाम नहीं कर रहा हूं, उस ईर्षाणु हिंसा प्राण व्यक्ति प्रणाम, मैं किसी को प्रणाम कर रहा हूं ना, ही इज द सिटिंग प्लेस ऑफ माई लॉर्ड, वो मेरे भगवान के आसन है, यहां पर बैठे हैं, उस आसन में मेरे प्रभु बैठे हैं, इसलिए आसन को और उनके अंदर प्रभु को दोनों को प्रणाम करते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं आराध्य भगवान ब्रजे सतनयस तद्धाम वृंदावनम, जैसे हमारे श्री भगवान ब्रजेंद्र नंदन हमारा आराध्य है पूज्य है, ठीक उन्हीं प्रकार उनके जो धाम भी ऐसे आराध्य है। इसी प्रकार भगवान को जब आप आराध्य माने तो जो भगवान के है सबको आराध्य मानना पड़ेगा, यही नियम है, जो भगवान के है सभी को आराध्य मानना पड़ेगा। प्रभुपाद जी बोलते इफ यू वांट टू लव मी देन लव माय डॉग, मुझे प्रेम कर रहा है उसका प्रमाण क्या है, मेरा जो कुछ है उसको प्रेम करेंगे, यही तो प्रेम की परिभाषा है। माता जी लोग बैठे हैं, जो छोटे बच्चा उनका होता है 1.5-2 साल के, उनके ऊपर बहुत चिंता माने इतने आसक्ति ममता रहता है उनको, हमेशा ध्यान रखते हैं उनको। उस समय में 2-3 साल के लड़का हो, वो किसी का घर में गया है चटशाली पढ़ने के लिए कुछ करने गया है, माता जानते हैं मैं उनको जाकर छोड़ कर आया हूँ, स्कूल में बैठा है और ठा लिखता है और कुछ करेगा आया छोड़ कर, लेकिन घर के काम करते करते पता है कि मेरे बेटा वहां कर रहा है काम, लेकिन करते करते वो नजर पड़ गया कहीं एक लाल चप्पल पड़ा हुआ, कि मेरे बेटा तो ही लाल चप्पल पहन रहा था और किसी का है, लेकिन चप्पल की दृष्टि पड़ने मात्र से क्या मन में विचार आएगा, बेटा आ गया क्या, तुरंत संतान याद आएगा, देखे चप्पल को याद आया उनका। अगर उनके गमछा पड़ा होगा कि उनके कोई एक चीज उनका जिसको पकड़ता है, कोई एक खिलौना पड़ा, दिख नहीं, दिखेंगे खिलौना कोई वस्तु, लेकिन स्मृति किसका आएगा, उनका आएगा। यही है प्रेम, क्योंकि वो संतान को प्रेम करते हैं इसलिए उनका यूज्ड कोई भी चीज जो उनके साथ संपर्क है सबको इतना ही प्रेम करेंगे और उन्हीं का ध्यान आएगा। ठीक इसी प्रकार जो भगवान को प्रेम करेगा, जो भगवान के हैं उनको इतना ही प्रेम करेगा। ये नियम है, ये नियम है, क्योंकि उनका हमेशा याद आएगा, उन्होंने वही याद आए। तो इसलिए आप किसी को ईर्षा करें, किसी को द्वेष करें, कैसे, तो ये तो भी प्रभु का है, तो उसमें बैठे, इसमें बैठे, ये भी हरि मंदिर है, ये भी हरि मंदिर है। इसी दृष्टि से सभी को सम्मान करना चाहिए। जीवे सम्मान दिवे जाने कृष्णर अधिष्ठान, प्रत्येक जीव को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि मेरे कृष्ण का अधिष्ठान है, द सिटिंग प्लेस ऑफ माय लव। इस रूप में सभी को सम्मान करना चाहिए। उसके बाद एवं निर्जित षड्वेगम क्रियते भक्तिरीश्वरे वासुदेवे भगवती यथा संलभ्यते रति। इन उपयुक्त कार्यकलाप द्वारा मनुष्य पशुओं काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्षा के प्रभाव को दमन करने में समर्थ होता है। देखिए ये जो षड रिप को दमन करने का उपाय बता दिया, बोले ये जो मैं बताया तीन श्लोक, पहले दो श्लोक में बताया था और थर्ड श्लोक में बताया कि सभी को सम्मान करना चाहिए। यही तीन श्लोक को जो पालन करे, बोलते हैं उपर्युक्त तीन श्लोक के द्वारा मनुष्य पशु, बोले पशु भी करे तब भी हो जाए, क्या हो जाएगा ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य के प्रभाव को दमन करने में समर्थ हो जाता है, इतने में समर्थ हो जाएगा, और ऐसा कर लेने पर वह भगवान की सेवा कर सकता है। जब तक उसको दमन नहीं, क्या सेवा तो कर ही नहीं सकता। मतलब हम अभी जो करते हैं सेवा, वो सेवा नहीं है, वो तो क्या कहते हैं, करने से पहले उसको एंट्रेंस है, प्रैक्टिस भी एंट्रेंस है, अभी एडमिशन हुआ नहीं सेवा, एंट्रेंस, क्योंकि जब तक वो छह को दमन नहीं करें तो सेवा नहीं हो सकता। इसी को बोलते हैं, इसी के द्वारा ये छह रिपु को दमन कर सकते हैं, और दमन कर लेने पर, दमन कर लाने के बाद फिर भगवान की सेवा कर सकते हैं। अभी समझ लो हम किस स्थल में हैं, हम बोलेंगे मैं सेवा करता हूँ, कोई बोलेंगे ये मन से हटा दीजिए बात, कभी फिर ऐसा वाक्य नहीं कहना मैं सेवा कर रहा हूँ, है ना, नहीं सेवा तो नहीं कर रहा हूँ, सेवा कर पाऊंगा इसलिए अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एंट्रांस में सेवा कर सकता है। इसी प्रकार वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रेम भक्ति को निश्चित प्राप्त कर लेता है, अगर फिर भगवान की सेवा करता है प्रेम भक्ति प्राप्त कर लेता है। तो उसमें श्लोक नंबर 33 यही सकल क्रिया द्वारा काम क्रोध लो मोह मद मत्सर्य यही षडवर्ग जय करिया ईश्वरे भक्ति करिवे, यहाते भगवान वासुदेवे आसक्ति हई। इस करने से भगवान में आसक्ति होता है। एमन ए प्रकार भक्तिर द्वारा ही निर्जित षडवर्गे निर्जित हया छे छठी कामादि अथवा इंद्रिय समूहर वर्ग जहादेर द्वारा जहर ईश्वर भक्ति करिवेन गुरु सुश्रुतादि अंगर द्वारा भक्ति यहाते पूर्वोक्त बुद्धि प्रवाहेर उपरम आनुषंगिक फल उक्त हई। अधुना भक्तिर मुख्य फल बोले जया जे भक्तिर द्वारा भगवान वासुदेव, बोलते अगर इस प्रकार भक्ति करने से क्या लाभ मिलेगा, इतने सारे परिश्रम करेंगे, तीन श्लोक करेंगे, फिर षड वर्ग जय करेंगे, बोलते उसका मुख्य फल क्या है, বলতে মুখ্য ফল বলতেছেন, জয়া যে ভক্তির দ্বারা ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের রতি বলিতে প্রেম সম্যক রূপে লাভ হয়, ভগবান প্রেম উৎপন্ন হয়, এই লক্ষ্য ফল। নিশম্য কর্মাণি গুণান তুল্যান বীর্যাণি লীলাতানুভীকৃতানি,
जो भक्ति के पद पर आसक्ति हो जाता है वह निश्चय ही इंद्रियों का नियंत्रक और इस तरह वह एक मुक्त पुरुष हो जाता है। जब ऐसा मुक्त पुरुष या शुद्ध भक्त विभिन्न लीलाओं करने के लिए भगवान के अवान्तरों के दिव्य गुणों तथा कार्यकलाप के विषय में सुनता रहता है और शरीर में रोमांच हो आता है, उनकी आँखों से आंसू बहने लगता है और आध्यात्मिक अनुभूति के कारण उनकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है, कभी वह नाचता है, कभी जोर जोर से गाता है, कभी रोने लगता है, इस प्रकार वह अपने दिव्य हर्ष को व्यक्त करता है। बोलते हैं कि भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर लेगा, तो पूछते हैं कि कभी ऐसा कोई प्रेम भक्ति प्राप्त किया? हाँ किए हैं, वो तो कैसे पता चलेगा कोई किया, कोई सिम्टम है, इन्होंने भक्ति की इस प्रकार भक्ति प्राप्त कर लिया, उसके पहचान कैसे करेंगे? ये श्लोक में बताते हैं कैसे पहचान करेंगे।
निशम्य कर्माणि आत्मभूतान बोलते हैं, मुक्त पुरुष से इस मुक्त हो चुके हैं जो पुरुष, जखन भगवाने अनुपम गुण अवतार कृत अलौकिक कर्म रावणवध प्रभृति पराक्रम श्रवण करिया अत्यंत हर्षवशत रोमांच एवं असुर प्रभृति सात्विक भावे गदगद स्वरे मुक्त कंठे नृत्य गीत आनंद और ध्वनि करें।
बोलते हैं वो जो इस प्रकार हो चुका है, वो जब कब बैठेंगे कथा प्रसंग में, भगवान के अनेक प्रकार कथा प्रसंग है, जैसे अभी अभी सीजन रामायण का चलता है, रावणबद्ध प्रसंग, बलिबद्ध प्रसंग, नरसिंह जन्म प्रसंग, बोले जो भगवान का कोई प्रसंग भक्ति का आ जाता है, जब उसको सुनता है, थोड़ा सा सुनने पर उनका इतने तन्मयता आ जाता है, शरीर रोमांचित हो जाता है, आँख से आंसू निकलता है, कंठ गदगद हो जाता है, कभी कोई तो ज़्यादा सुनने से उठ के नाचता है, हे हरि हे गोविंद करके लोटपोट हो जाते हैं। इस प्रकार लक्षण जिसमें दिखाई पड़ता है बालों के उनको हो चुका, हाँ जिसका नहीं ये होगा ही नहीं। हाँ हम तो पता नहीं, 3 घंटा सुनने पर एक ड्रॉप आंसू नहीं निकलता, सुखा है ना, बोरिंग भी कर देते, डीप वेल बोरिंग तो वो भी नहीं है ना, कुछ नहीं निकलता, निकलता है मुद्रित नयनम, ये झोंक आ जाता है, लेकिन ऐसा नयनम गणदस्रु धारया वदनम गुदगतर उद्धया गिरा, ये नहीं हो पाता। तो इसी बात को कहते हैं जिनका ये होता है मानो उनका हो चुका है, ये उनका बाहरी लक्षण है, वही लक्षण निशम्य अच्छी प्रकार सुन लेगा, सुनने मात्र से हो जाएगा। चैतन्य भागवत में आता है कि शिवास पंडित एक बार जाते रहते थे गंगा किनारे और देवानंद पंडित का क्लास चल रहा था। देवानंद पंडित कोई भक्त नहीं थे, भागवत के बड़े विद्वान थे, वो भागवत व्याख्या करते थे, वो भागवत श्लोक सुन करके वो आकर शिव जाकर बैठ गए, उनका स्टूडेंट लोग से बैठे हुए थे, उन पढ़ाता था देवानंद जी ने, जाकर बैठे और स्टूडेंट को कुछ नहीं हो रहा था, वो नोट कर रहे थे कि इसी टीका कर रहे थे और समझा रहे थे, लेकिन वो सुन करके इतने बात वो तो कांपने लगे, लोटपोट होने लगे, रोने लगे, हे हरी कभी बोलने लगे, वो सारे लड़के बोले ये कहाँ से आ गया यार, डिस्टर्ब करता है क्लास में, उनको उठा कर लेके पटक दे बाहर, नट आउट, क्लास में डिस्टर्ब करता है। तो देवानंद पंडित भी उनको रोका नहीं, बोले इतने बड़े भागवत मर्मज्ञ है नहीं, समझा भाई ये ऐसा नहीं है, आप जैसे सूखा श्रोता नहीं है, ड्राई ऑडियंस नहीं है, उनको ऐसे मत करो, उनको बैठाओ ढंग से, ये बात नहीं क्या, इसलिए देवानंद पंडित का अपराध हो गया, महाप्रभु उनको खूब डांटे, अपराध कहते, क्योंकि प्रेमी प्रेमी भक्त का प्रेम को पहचान नहीं पाया, पहचान नहीं पाया। एक बार जब प्रभुपाद जी ने थे वृंदावन में, प्रभुपाद हाउस में थे, तो एक व्यक्ति आया, नया नया मंदिर उन्मोचन हुआ था, अंग्रेज मंदिर करके बहुत प्रसिद्धि था, लोग तो रिक्शा वाले भी नहीं आते थे वहाँ, बहुत इमें था, तो एक कैसे कोई साधु जैसा व्यक्ति आ गया, वृंदावन में तो साधु तो घूमते रहते हैं द्वार द्वार में, एक आ गया,
कुछ कहीं सुना होगा, बोला ये अंग्रेज है वो क्या समझते हैं, उनको इसी चकमा दिखाएगा सब। तो आ करके दर्शन करके तुरंत हा कृष्ण कह करके रोने लगा, लोटपोट होने लगा, ऐसे कंप ऐसे करने लगा, ऐसे रोने लगा, ऐसे होने लगा। बाप रे बाप, हम तो भक्ति रसावत सुनने पड़े थे, हाँ, रोमांच अश्रु कंप पुलक, बाप रे बाप। तो थोड़े से लोग थे विदेशी भक्त, कोई इंडिया में थे नहीं, दौड़ करके प्रेसिडेंट को बोले, प्रेसिडेंट दूर दौड़ कर आया, देख करके प्रभुपाद हसन प्रभुपाद बैठे जाए, बोले प्रभुपाद प्रभुपाद कोई ऐसी साधु है, ऐसी हो ऐसी रोमांच अश्रु कंप ऐसी गिर रहा है, ऐसे कर रहा है, अब आरती के समय में दोपहर में कर रहा है। बोले अच्छा कैसे लोग ना ऐसे ऐसे ऐसा बने ऐसे कर, बोले ऐसा करो जाओ दो लात मारो उसको, अगर लात मारने के बाद भी वो ऐसा करते रहा, आपको कुछ बोला नहीं, आपको कोई नया नो रिएक्शन रिएक्शन ना करके फिर ऐसे किया, तब फिर उसको प्रणाम करना, माफी मांगना, उसको लेकर मेरा पास भी आना। वो अगर वो उठ करके तुरंत झगड़ा किया तो और दो लाठी मार के जूता भाई भगा देना उसको। तो अक्सर प्रभुपाद जी के जो विदेशी फॉलोअर थे ना, वो तो मैकेनिकल है, प्रभुपाद बोल दिए इमिडिएट विल डू इट ना, वो गया मारा लत लात, अरे हम तो कर ही नहीं सकते। लेकिन विदेशी भक्तों का उनका है ही नहीं कुछ अंदर, जो फीड कर दिया वही निकल पड़ेगा, जैसे मशीन की तरह जो फीड कर दिया ना वही निकले। नो प्रभुपाद तो एक ही वाक्य ब्रह्म वाक्य प्रभुपाद से, अरे हो इस प्रभुपाद बाहर के लोग तो जानते नहीं, लेकिन हो क्या जाने, जो फीड किया वही निकलेगा। जाके दो लात चला दिया, वो उठ करके पूरा उझाड़ जमाने उनका सप्तपुरुष उझाड़ दिया। अरे साधु ने उठ करके उनको ऐसे गाली दिया, ऐसे झड़ मारने निकला, वो थोड़ा हट्टा कट्टा था, डरता था मारो ज्यादा मारे के साथ लड़ने से, लेकिन ऐसे गाली दिया चिल्लाया, जब चिल्लाया प्रभुपाद जी ने बोले थे और क्या क्रिया करने का, दूसरी क्रिया मुद्रा करके गेट से भगा करके आ गया। प्रभुपाद बोले ऐसा करने का, अगर बाई चांस एक मानने पर कुछ नहीं होता, उनका उल्टी ससमान ऐसे करते रहा, फिर उनको पूजा प्रणाम क्या प्रफन करके ले। तो ऐसे बहुत डुप्लीशियस होते हैं, विशेषकर बंगाल में, अरे बाप रे। आप लोग को अभिज्ञता होगा कि नहीं, मैं आप जाते से देखे ना, बंगाल में तो थोड़ा सा कीर्तन कर दो तुरंत आकर ऐसे लौटेंगे, आप तो बोलेंगे शुद्ध भक्ति के सीमा तक पहुंचे, तुरंत लौट कर उठेंगे, उठ कर जाकर फिर छूटेंगे। चेतन भागवत में कथा आता है, जब हरिदास ठाकुर एक होता ना राजस्थान में करते हैं, सपेरा जानते हैं, सांप लेकर के नागिन लेकर के नचाते हैं, पदगान करते हैं, सांप नाचता है, तो जो सपेरा होते हैं उनको कुछ शक्ति प्राप्त करते हैं साधना आदि करके, तो जाकर के वो पद गाते हैं, तो नाग सांप वो नाचता है, वो पद के थोड़ा सा ये करने तो सांप गुस्सा मारेगा, फिर वो पर्टिकुलर पद में वो डबल तुरी क्या बोलते हैं, डबल तुरी होता ना, उसको गा करके और उसको बोलेंगे उसी प्रॉपर रिदिम में वो सांप निकल कर नाचेगा बड़ा हंसा। तो उनको नाग देवता मान करके लोग पूजा करते हैं, दक्षिणा देते हैं, प्रणाम बड़े सम्मान करते हैं, और वो नाग देवता को कुछ पूछते हैं वो बता देता है, भविष्य भविष्यवाणी भी करता है फोरटेलिंग, कि नाग की कृपा से नाग देवता की कृपा से उनके ऊपर आवेश हो जाते हैं, ऐसे गा गा करके नाग देवता पूजा करके फिर वो ये करता है, नाग देवता करते हैं, उनको बोलते हैं नाग देवता आवेश हो जाते हैं उनके ऊपर। तो एक ऐसे सपेरा जो नाग उपासक नाग देवता करके वो आकर के नाच रहा था, लोग बहुत सम्मान से जाकर चारों तरफ कई सैकड़ों लोग चारों तरफ खड़े खड़े थे। तो हरिदास ठाकुर रास्ता में जा रहे थे, उनको लगा कि जो गान कर रहा है सचमुच नाग देवता की वंदना है, देव वंदना। तो नाग देवता में उन्होंने हरिदास ठाकुर को याद आया काली नाग का, काली नाग का याद है, काली नाग के ऊपर भगवान कृष्ण नाच, काली कृष्ण का याद आया, काली कृष्ण को याद करके उन्होंने वो पद को गा करके नाचने लगे, उनको आवेश हो गया। जो भक्त है उनको तो खाली इशारा से उद्दीप्त, इसको बोलते उद्दीप्त भाव, थोड़ा उद्दीप्त कर देने से आगे स्टेज पे वो नाचने, भीड़ के अंदर चले गए जा करके ऐसे करके नाचना गाना जो करते ना, हरिदास ठाकुर नाचने लगे, नाचे तो जो जो नाग देवता था वो आकर उनके चरण छुआ। सब देखने, अरे ये नाग ठाकुर जाकर ये बूढ़ा का चरण छू रहा, उनका चरण छुया, चरण धुल लिया। बाकी सारे लोग उनको प्रणाम किए, 10 रुपया 5 रुपया चढ़ाए उनके ऊपर, कोई फल मूल चढ़ाए। तो ये एक यात्रा पार्टी की यात्रा ना, जो अपेरा काम करता है टाउटर पैसा कलेक्शन करने वाला, ऐसे टाउटर ही खड़ा था। बोले ये क्या करते, उनसे तो मेरा बढ़िया एक्टिंग कर सकता हूँ, ये एक्टिंग क्या करता है, ये एक्शन से मेरा एक्शन और बेटर होगा। तो वो कूद पड़ा भीड़ के अंदर, फटाक से एक बार कूद करके, जंप करके, नीचे अछड़ खा करके ऐसे नाचने लगा, एक्शन करके धमाका उठाया। हरदास ठाकुर नाच से कई 10 गुना नाच किया, हाँ धमधम धमधम नाच कर घुमा, ऐसे उठा। जैसे नाच करने लगा, हरदास ठाकुर साइड कर खड़े हो, साइड होकर खड़े हो भीड़ में, पब्लिक के अंदर आ गए। तो नाग देवता जो अभी जाकर उनके चरण छुआ था, सब पैसा चढ़ाते थे, फल फूल देते, प्रणाम सम्मान करते थे, वो नाग देवता जैसे देखा कि वो धूमधाम करके नाचने लगा और बढ़िया नाच रहा है, तो बेत उठाकर गया, ऐसे पिटा उनको, ऐसे पिटा हो तो बिकल होकर के बोले मुझे क्यों मार रहा है, वो पिटते जा रहा है, वो सारे लोग भी उनको गाली दे रहे हैं। यही है सर्वसाधारण लोग समझ नहीं पा रहे, लेकिन वो क्या बोलते हैं उसको, कपी डुप्लीकेट ध्यान से कोई भी सब पहचान लेगा। और हरिदास ठाकुर नाचते थे, बोलते नहीं इस नाच के अंदर है कुछ तो चीज है, सबका भक्ति भाव जितने भी सेम डांस हो के अच्छा नाच कर नहीं पा रहे थे हरिदास ठाकुर, लेकिन उनके अंदर सच्चाई है, कुछ उनके अंदर है पावर, वो साधारण पब्लिक भी अनुभव करता था और उनको सम्मान करने लगे। बोले ना ये कोई डुप्लीकेसी नहीं, कोई कॉपी नहीं करता, इमिटेशन नहीं, उनका अंदर कुछ सच्चाई है। वो देख करके सम्मान किए, नाग देवता आकर के उनको प्रणाम किया, लेकिन वो और सुपर डांसर गए, इतने बढ़िया डांस किया, वो पिटाई खाया, गाली खाया इसे, क्योंकि पब्लिक देखने से समझ में आ जाते हैं। अगर पब्लिक सच्चाई को नहीं देखे तो फिर डुप्लीकेट को सच्चाई समझेंगे। हम लोग का ही दुर्भाग्य है, हम सच्चाई कभी देखे ही नहीं, तो इसलिए डुप्लीकेट को मान लेते हैं, अरे चमत्कार को नमस्कार, क्योंकि हम असली माल देखे ही नहीं है, तो नकली माल को असली समझते हैं। लेकिन जो एक बार असली देख चुका है तो फिर नकली तो नकली है ना। जैसे आप लोग को अनुभव क्या होगा, जिनका घर में गाय होगा कि गौशाला के पास रहता है, गाय का दूध लाकर पीता है, तो कहीं से भी कितने बढ़िया कलर डाल कर फ्लेवर डाल कर दूध दे दो, गाय का दूध नहीं, वो बोल देगा नहीं, तुरंत बोल देगा ना, 10 साल से पी रहा नहीं, फटाक से बता देगा। कितने बढ़िया से आपके कोई भक्त भी अपने गौशाला से लेकर के आए तो दूध पीकर बोल देगा तुम बदमाशी क्या है, पान नहीं तो दूध नहीं, तुरंत बोल देंगे, क्योंकि एक बार जो असली को देख चुका है तो फिर पहचान लो ना, ये तो नकली, ये तो पानी जैसे जूस मिलेगा। लेकिन जो असली कभी देखा ही नहीं तो क्या करेगा, है ना, फंसेगा। रुपये आपको सोने का कोई मुद्री खरीदना है, कोई अलंकार खरीदना है, और सोने के बारे में कोई आपका आइडिया ही नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, पैसा लेकर गए बाजार में, इजीली धोखे खा जाएंगे, है ना, कोई भी आपको ठग देगा देखकर। मैं बहुत साल पहले जब मैं संकीर्तन में था बस में, वहाँ तो भारत सरकार घूमते, एक बार कर्नाटक गए थे मैसूर, हम मालूम था मैसूर में चंदन होता बहुत होता, मैसूर सैंडल, तो टीपू सुल्तान पैलेस देखने गए, वहाँ देख जा करके आए, जैसे बाहर आए गाड़ी के पास देखे कि कई लोग खड़े थे, दुकान था, लोग चंदन की लकड़ी लेकर घूम रहे थे बेचने के लिए, और 50-50 रुपया बड़े बड़े मोटा मोटा लकड़ी था, हमने 50 रुपये लिए, बड़े बड़े मोटे लकड़ी 50 रुपये, बार्गेनिंग के तुरंत आधा कम कर दिया, 25 में आ गया, हमने वो सस्ता मिल जाता, वो नहीं मिलते, बोले हमारा चंदन फैक्ट्री है इसमें ले आते हैं, वो हमको बताने लगा आपको इसे कम पैसा में नहीं मिले, इतने किसे कम कर दिया, हम चंदन फैक्ट्री के लेबर है, काम करते हैं, तो यहाँ से मैं ले आए तो आप साधु लोग है, आपके काम में लेगा, चंदन ले जाओ हमको दे देते, और 10 रुपया देने के राजी हो गया, तो हम तो 10 बजे खरीद लिए। वो फिर हमको, हम बोले पक्का चंदन है, पक्का देख लो, वो क्या करता था, उनका अंदर के कांच रखा था, वो कांच से उसको खरोचता था, वो लकड़ी को खरोचता था, काट देता था, उसके अंदर से इतना स्मेल आता है, बोले अगर डुप्लीकेट चंदन होगा ऊपर से इतना चढ़ाया होगा तो देखो ना, उसे खरोच खरोच करके इतना सारा खर्च लेता था, उसके अंदर इतने स्मेल आता था। तो हम जितने थे सभी ने दो दो चार चार पांच पांच 10-10 खरीद लिए, 10-10 रुपया का है खरीद, रखसा बैग के नीचे दबा कर रखे, वह बताएंगे इतने बढ़िया। अरे भाई कम से कम वृंदावन तक आ जाता, यही नहीं हुआ। हम भी किसी बोले थे इतने सस्ता में चंद्र, यहाँ तक कामयाब नहीं रहा, वहां से चल करके चार दिन के अंदर कभी कभी स्मेल खत्म हो गया। अरे क्या हो गया, चंदन निकाल ऊपर रखें, बैग की स्मेल हो रहा था, कुछ भी नहीं, जला दे तभी नहीं, काट कर कुटे कुछ भी नहीं, ये इसे ठग दिया। हाँ ऐसे ठग, हम असली चंदन का देखे नहीं थे कभी, फंस गए ऐसे। आप कभी अभी इसी सीजन में आप जाओ हरिद्वार ऋषिकेश, ऊपर जब गए अपने चार धाम गंगोत्री जमुनोत्री के साइड में जाओ, देखना बस स्टेशन में बाजार में सब आ जाएंगे, दो चीज बेचने वाला जरूर आएंगे, एक आएंगे हाँ कस्तूरी, कसर नहीं केसर, केसर कस्तूरी, और एक तीसरा होता है शिलाजीत, शिलाजीत शिलाजीत केसर तो जाफरानी केसर वो हिमाचल यहाँ होता है कश्मीर साइड, वो नहीं लाते हैं, शिलाजीत और कस्तूरी, कस्तूरी मृगा, और उसको ए हाथ में पकड़ा देंगे, आप पकड़ो वो हाथ में ना पे लगाओ, अद्भुत ये हाथ इतने स्मेल आएगा, यहाँ पकड़ेंगे वहां स्मेल आएगा, कैसे क्या करते हैं पता नहीं, कोई लगा देते हैं इधर की फट से, ऐसे हाथ लाओ करके इस लगा दे, क्या करते हैं ये हाथ ऐसे करेंगे, बोले यहाँ इतने स्मेल आएगा, और वो भी 5 रुपया से 5 रुपये में आ जाएंगे आसान से, आपके ऊपर है बार्गेनिंग के टेक्निक, आप अगर बार्गेनिंग किए चले जाओ, मेरे पास 5 रुपया है, 5 रुपया दे ही डालेंगे आप जो है वो ऐसे उनको देखने के लिए बिल्कुल चमड़ा लगा हुआ है, उसमें मृग चर्म जैसे लगा हुआ है, उसका ऊपर बाल निकला हुआ है, ऐसे क्या बताएं। अब अपना वृंदावन मंदिर में जाओ, प्राय हमेशा मिलते जैसे विशेष करके कार्तिक में होली में देखना, मेन गेट पर बैठे होंगे हनी शहद बेचने वाला, शहद बेचना कैसा, क्या बकेट में लाकर डाल कर एक लकड़ी, उसके अंदर जो महू छत्ता होता ना लकड़ी बकेट, शहद के अंदर छत्ता डाला होगा, 2-3 छत्ता डालकर बैठा। अरे भाई शहद होगा उसे छत्ता क्यों डालता है, क्योंकि शहद जब निकल जाता है छत्ता में तो शहद रहता नहीं, तो सूखा रहता है, कोई काम कर नहीं, लेकिन वो ऐसे डांग रहे, अरे वो अभी शहद से ही निकल, शहद से छत्ता निकलता ना, छत्ता से शहद निकलता, एक लकड़ी काट कर कच्चा लकड़ी, पेड़ से कच्चा लकड़ी काट कर उसमें कुछ सिलाई फिलाई करके जॉइंट करके महु छत्ता सूखा डाल करके मामफम लगा करके उसी को प्योर गुड़ पानी, कोई शहद भला दो चार आना डाला वो भी नहीं है, प्योर गुड़ पानी में चीनी पानी में कलर देकर डालकर उसे डुबा के रखेगा, और विदेशी लोग ओ ऐसे उठाता डालता हूँ प्योर हनी, हाँ हनी 20, 2-4 मक्खी तर रहे थे उसमें, हनी 20 हनी छता देकर ओ कितना फटाफट खरीदे, चीप चीप नथिंग फटाफट, बेचारे क्या कर इतने मार्क्स क्या करें, हम भी कभी धोखे खाए, जो असली जो नहीं देखे नकली से धोखा खाए, लेकिन एक बार जो असली देखा है कैसी प्रक्रिया किस प्रकार चलाते हैं क्या करता है वो तो फिर देखने से बोला डाउट है। हम देखे हैं कैसे मधु छत्ता से मधु निकला जाता है फिर क्या होता, तो वैसे हमको क्या दिखा गया, तो अगर आपको छत्ता देखने वाला आ जाए ना तो 10 रुपया दे करके विदा कर दे भैया, माफ कर देना मेरा रोजी रोटी चलता है कुछ बोलना नहीं, ऐसे करते हैं, भैया देखो मैं गरीब हूँ आप जाओ, मैं आपको कुछ नहीं बोलता हूँ आप जाओ क्यों उनको ढकना है। ठीक इसी प्रकार भक्ति भी लक्षण ऐसा है, जो असली को अनुभव नहीं किया देखा भी नहीं और नकली से फंस जाए, तो इसलिए जैसे बाजार में जानते हैं वो तो नकली को सावधान, ये भक्ति में भी नकली को सावधान, हमेशा उसमें बता जाता बी केयरफुल। इसलिए शुरू से कहते हैं आदव गुरुपाद आश्रम में गुरु भी ऐसे ही निकलते हैं असली नकली मीडियम 3 प्रकार के होते हैं, तो देख करके वो काम लेना नहीं तो मेरे बाद में रूपो गोस्वामी ने कहे भक्ति साम सिंध में, बोले अभी क्यों प्रश्न उठाते रोते हैं, बोले पहले सोच लेना चाहिए इसे कम, देखने से केवल बाहरी अपीयरेंस देखा ये सब देखा, थोड़ा प्रामाणिक स्रोत को चेक किया ना, नहीं अथेंटिसिटी को चेक करना था ना, कर केवल बाहरी वाक् चातुर्य स्वरूप रूप इसमें देखकर फंस गए तो फंस गया। हम इसमें हेल्प नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार बोलते हैं कि ये सब से, इसलिए ये सब चीज सीखने के लिए साधु संगे ना, ये सब जानना चाहिए असली नकली के बारे में, सारे लक्षण समझ करके फिर करो, कहीं फिर फंसो ना। बोलते हैं भक्त तो सरल होते हैं, सरलता वैष्णवता, सरल होने पर भी कृष्ण भक्त चतुर, चतुर होना चाहिए, क्लेवर होना चाहिए। इट शुड बी सिंपल बट क्लेवर। कोई अगर धोखाबाज आए ठकने के लिए, प्रणाम करके हाँ हाँ बहुत अच्छा, हम सोचेंगे आएंगे कोई बात, वो भी समझ गया मार दिया मुझे पट्टी वो नहीं फंसेगा ठीक है। इसी प्रकार चतुराई भी होना चाहिए, लेकिन चतुरता पता कैसे चलेगा, जब इस बारे में आप सुने होंगे, समझे होंगे, पढ़े होंगे, तभी ना। ये आवश्यकता। तो बाद में कहते हैं बहुत लंबा, तो बोलते हैं कि इस प्रकार जो, तो फिर असुर बालक कहते हैं कि तो लेकिन ये सब आप कहते हैं, वो तो जो साधु संत हैं, सतगुणी है, ब्राह्मण है, जाति पति, उन वो लोग कर सकते हैं, हम कैसे करेंगे। तो बोलते नहीं, ऐसा बात नहीं है। भक्ति इसलिए श्रेष्ठ है, भगवान इसलिए श्रेष्ठ कहें कि इन उपाय में, इन पद्धति में कोई वस्तु कोई चीज अब बाहर से लाना नहीं पड़ता, सारे आपने पास मौजूद है, अपना ही अत्यंत आयताधीन वस्तु है। जैसे क्या बोलते हैं कि भक्ति का आचरण में सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है, जानते हैं वो बताते हैं। ये भक्ति पद्धति में सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है मन। बोलते मन ही सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। वो ये तो बाजार से खरीदते नहीं कभी, कि किससे धार धुरा भी लाते नहीं, वो अपना है मेरे मन, उन्हीं को देना होता है। मैं आसक्त मना पार्थ जोग झुंझम मई वे मनाधस्तन मन मना भव, हमेशा बोले यही कहे। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, आवश्यकता जो उपादान है, वो है मन, और वो आपके पास ही रखा हुआ है मौजूद। कोई बाजार से लाना, दूर से लाना, कोई परिश्रम करते मन को लाने के लिए नहीं, लाने के लिए परिश्रम नहीं कि देने के लिए परिश्रम नहीं, कोई कुछ इन्वेस्टमेंट करे थोड़ा परिश्रम लगाए, नो बोले मन दूंगा कैसे, बोला बैठ जाओ थोड़ा सुनो उनके कथा ढंग से, लग गया मन, वेरी इजी, सुंदर श्रृंगार हुआ है थोड़ा देख लिया मन लग गया, अच्छा सुंदर थोड़ा परिश्रम। बोले देखने के लिए भी भगवान के रूप को क्या चाहिए, आंख दृष्टि से देखेंगे ना, आंख से। बोले ये कहां से बाजार से खरीद के लाते हैं क्या, ये अपने पास है मौजूद और अपने आयत्ताधीन है, ऐसा नहीं आप विद इन योर कंट्रोल इजी। देखो स्तुति करने के लिए वाणी चाहिए, वो आपके अंदर है, कोई किससे मांग कर लाना, बाजार से खरीद के लाऊं जब देखूंगा तब हो जाएगा तब काम करूंगा, ऐसे कुछ नहीं है, इट इज विद इन यू, नो परिश्रम कुछ नहीं। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोलो। नाचने के लिए हाथ उठाओ पैर उठाओ, नाचो, आपका है कुछ नहीं, क्या है सो इजी। बोले आपके पास है, कुछ लाना भी नहीं है और इट इज फुल्ली अंडर योर कंट्रोल और किसका बस में भी नहीं है, तो इसी में हो जाता है। बोलते हैं लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन हमारे अंदर शुद्धता नहीं है, ब्राह्मण कुल में हो, ऐसे गोत्र हो, ऐसे। बोले ये नहीं है, ऐसे नहीं, भगवान कोई जाति पात ये वो कुछ नहीं देखते हैं, वो तो केवल भावग्राही भाव को देखते हैं, अंदर कुछ देखते हैं, बाहर कुछ देखते नहीं, कोई वस्तु को ना ग्रहण करते हैं, ना कोई शुद्धता को देखते हैं, कोई जात पात को देखते हैं, कोई उत्तर 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 देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं। तो उसके प्रमाण के बारे में बोलते हैं कि इतने सरल और शॉर्टकट स्ट्रेट फॉरवर्ड उपाय है, इसलिए इसको श्रेष्ठ कहा गया। सब अपने पास है, उन्हीं को देखकर किया जा सकता है, और बड़ी जल्दी से हो सकता है, और उसका प्रभाव बड़ी पावरफुल है। बोलते हैं कि ऐसा कोई, तब बोलते हैं कि প্রহ্লাদ আরও বললেন, হে ভ্রাতৃগণ, আরে ভাই, ভক্তি আমাদের পক্ষে নিত্যান্ত অসুলভ নহে। এইসা নেই কি সুলভ নেই, বহুত সুলভ আমার লি। ভক্তির উপাদান জন্য স্থান হইতে, ভক্তির উপাদান অন্য স্থান হইতে সংগ্রহ করিতে হয় না, সমঝ মে আতন। ভক্তি কাজ উপাদান হে তো দূসরে কহি সে কলেক্ট করকে লাভ ভক্ত বলে, এইসা নেই, অন্য স্থান হইতে সংগ্রহ করিতে হয় না, উহা নিজ নিকটতেই বিদ্যমান। বলে আপনা শরীর মে আপনাই হে, আপনামেই রক্ষা হুয়া হে। মনহি ভগবত ভক্তি লাভর পরম উপাদান, যে সবসে পরম উপাদান ভক্তি লাভর মন হে, ও আপনার পাশই হে। অতএব মনে মনে শ্রীকৃষ্ণের ভাবনা করো, সে কই এঠো বৈঠকে মনে মনে চিন্তন করো, হো গিয়া কাম, মনে মনে ভাবনা করো। শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পাদ সারথ দর্শন টিকা ইহার ব্যক্ত করিয়াছেন যে চক্ষু দ্বারা তাহার রূপ দর্শন, কর্ম দ্বারা নাম গ্রহণ প্রভৃতি, নিজের নিত্যান্ত আয়তাধীন ইন্দ্রিয় নিগ্রহে যখন হরিভক্তি লাভের একান্ত সহায়ক, তখন নিরাশ হইবার কোনই কারণ নাই। বলতে ফের হোপলেস কি হতা হয়, নিরাশ কি হতা হয়? বলতে হাত আপকা পাশ হে, মুহ এক পাশ হে, আঁখ আপকা পাশ হে, কান আপকা পাশ হে, সারে নবরা ভক্তি তো আপকা পাশ হে, ডিপোজিট হে। বলে হতাশ কি হো রা তো, হতাশ হওয়ার কোনই কারণ নেই। বট কে শুনল, দেখলো, বললো, হাত মে কুচু ছামুছি লগা দো, কুচু ভি কাম করলো, হো গিয়া, ফের হতাশ কি হো, হতাশ হওয়ার কোনই কারণ নেই। শ্রী প্রহ্লাদ নারদের উপদেশ অনুসারে সাংসারিক বিষয় সুখের অনিত্যতা আর ক্ষণভঙ্গুরতা বর্ণন করিয়া সরকার তো ফের বলতে কি দেখো, ইসকু ছোড় করকে ইতনে ইজি সিওর সার্ট স্ট্রেট ফরওয়ার্ড প্রসেস কু ছোড় করকে সাংসারিক লোক সুখ কামনা কে লিয়ে হোয়াট নট দে আর ডুইং, বাকি কিসকা বাত ক্যা কহ, আপ জিতনে ইয়ং বালক বৈঠে হুয়ে সচ বতাও। ও হো 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 হো, অভি সিজন চলতা পরীক্ষা কা প্র্যাকটিক্যাল, বিচার ভাগে ভাগে গয়া সুবহ সুবহ উঠকর প্র্যাকটিক্যাল করুঙ্গা, হোপফুল নেই, হোপলেস হেকর যাতে হ্যাঁ, ফের হো না হো পরীক্ষা যে তৈরি ফের করনা হে, আশা রখ করকে নৌকর বন পাউ হ্যাঁ না, কিতনে রগড় কিতনে ক্যা 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 করতে, শরীর কু গলানা পিঘালনা, কিতনে পয়সা ধন খরচ, ধনব্যয় মনব্যয় ইন্দ্রিয়ব্যয় সব হ্যাঁ না, উত্তম এসে কিতনে কঠিন ক্যা ক্যা হ্যাঁ, মিলতা ক্যা উসমে অন্ত মে যা করকে, মে নেই বতানা চাহতা, আপ সব এক্সপিরিয়েন্স হোগে, দেখে হোগে, শুনতে হোগে সব, মে আগর কে অবসর হো যাও কহি থোড়া মো। আরে ইসমে তো কুছু নেই, আজকে রিক্সা ড্রাইভার অব্বি উনকো বুলা করে লে আও, এক ধোতি পহনা দো, টকলা করকে তিলক লগা কর, কুছ নেই জানতা, ছোড় দো, খড়া কর দো গেট পর, বড়ে অবসর আয়েঙ্গে পন্ডিত জি প্রণাম করেন, অভি দু ঘন্টা পহলে পকড় কর লাগে। কেবল ভগবান কা হোনে কা ঢক্কন লগা কর প্রয়াস ভর কিয়া, ইতনে মে ইতনে বড়ে ডিগ্রি লেতা, আব জো হো যায় তো কহনা ক্যা, তো বলতে ওর বিশেষ সুখ কে লিয়ে যে বড়ে বড়ে যজ্ঞা প্রয়াস কিয়া যাতা হয়, বড়ে বড়ে প্রয়াস কিয়া যাতা, বলে ইসমে কিতনে কিতনে কঠিনাই কে সামনা করকে, বড়ি দেনা, ইয়ে করনা, ও করনা, ইতনে কঠিন প্রয়াস করকে কিয়া যাতা হয়, কিয়া জানে সে মিলতা কিয়া হয় উসমে, বলতে সুখ কে আবরণ মে দুঃখ, এই শব্দ লিখে সুখাবরণ দুঃখম, বলে দুঃখ হি মিলতা হয় উপর সে মঢ়া হুয়া সুখ, বস দ্যাটস ইট, অন্দর সে খুব রোতে লেকিন করে ক্যা, অন্দর সে খুব রোতে স্টাটস হে, স্টাটস মেনটেন করলে কে দেখা হুম, দিল্লি মে আজকাল তো কিতনে ভি ওভার ব্রিজ আন্ডার ব্রিজ হো চুকা হে, মেট্রো নেই তো ফির ভি রেড লাইট হো যাতা হে, তিন বার মে পার করতে আপনি, এক বার মানে তিন বার আপকে সামনে বিকল হতে হরি বত্তি হুয়া যাকে পৌঁছ নেই পায়, ফের রেড হো গা, ফের হরি বত্তি পা ভাগ ভাগ যা নেই পা, ফের রেড হো গা, तीसरी बार में निकले, तो मैं अभी आ रहा था स्टेशन में, जो मेरे लेकर आ रहे थे, बोले चिंता मत करो तीन बार तो जाएगा, पटिया जब कीजिए। तीन बार से पहले नहीं निकलते, बोले ये ट्रैफिक, हम पास में थे, बोले ये ट्रैफिक, बोले इतने में ही 20 फुट तीन बत्ती लग जाएगा, पूरा बम्पर टू बम्पर प्यार, गाड़ी चलता नहीं आगे, इतने भीड़, जो निकल गए वो भी आगे नहीं जा पा रहे, जो खड़े हो तो बढ़ नहीं पा रहे, तीन बत्ती लग जाते, मतलब स्टेशन पास में फिर भी 2 घंटा पहले निकलना होगा, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। इसमें भी घर में जो बनाकर खाएंगे, मतलब थोड़ा कुछ सब्जी लेकर आओ, सब्जी भी कोई ज़्यादा तो खाते नहीं हो, इधर उधर खाते हैं फास्ट फूड सब, फिर भी थोड़ा कुछ बनाने के लिए सब्जी लाने के लिए निकलेंगे, गाड़ी लेकर निकलेंगे, गाड़ी लेकर सब्जी मंडी जाएंगे, सब्जी मार्केट के लिए दिल्ली में, तो सब्जी खरीदेंगे ज़्यादा से 125 रुपया की, 125 रुपया के सब्जी मिलाकर खरीद के लाएंगे, जो भी पाव भर के किलो भर, तो उसके लिए 350 रुपया की पेट्रोल जलाएंगे, और जाते समय 2 ट्रैफिक लाइट आएगी तो 2 घंटा उसी में खा जाएगा। सुबह निकलेंगे 7 बजे, 10 बज जाएगा, आ करके ट्रफिश टाइम हो रहा है, गुस्सा सब्जी आके पटकेंगे इसे, इतनी लेट होगा किसके ऊपर गुस्सा दिखा रहा है, ट्रैफिक लाइट क्या करे, ऑड इवन होने के बाद भी वही हाल, ला कर पटका कर गाड़ी में बैठे 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 हाल खराब हो चुका है, आकर बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, चर्बी बढ़ रहा है, तुरंत गाली देते हैं, कुछ करो ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है, जाकर घर के अंदर कबाट बंद करके साइकिल खरीद के रखे हैं, वो साइकिल बैठ कर खूब पेडलिंग करता है, गाली देता है पेडलिंग करता है, अरे ये क्या करता है, अगर यही साइकिल उसी को चला कर जाता, ट्रैफिक लाइट भी काम नहीं करता, जल्दी से जा करके कोई खर्चा भी नहीं होता, पेट्रोल डालते सब्जी खरीद के ले आता, और अभी नहीं करना होता, टाइम हो जाता, स्टार्टस है, ऐसे करें साइकिल चढ़ के हम जाएंगे। लो इसी को कहते हैं ये दुख है, बाहर से ढका हुआ सुख, सुखावरणम दुखम, दुख ही है, ऊपर से कवरिंग किया गया सुख का, इसके भोग है, बोले इसी विषय सुख के लिए कठिन परिश्रम करना चाहते हैं, और इतने आसान है, असली सुख उसको नहीं पाते, बोले इसमें कोई सुख होता है, बोले सुख सुख के घनत्व, जो असली क्या बोलते हैं कंडेंस सुख जो है वो बोलते हैं श्री भगवान हरि, हरि सुख का कंडेंस फॉर्म है, और वो अपने पास सुलभ है, और उनको पाना भी सुलभ है, उनके उपाय भी सुलभ है, और उसको अब करना नहीं चाहते, उसको छोड़कर दूसरा बात निकालते, ये कितना है ना, नहीं उसके लिए तो भाई भगत होना पड़ेगा, तिलक सीता लगाना पड़ेगा, वो सब बहुत सब काम करना पड़ेगा, तब प्रहलाद जी बोलते हैं नित्य आनंद रसर महासमुद्र, मतलब नित्य आनंद रस का महासमुद्र श्री हरि जखन सिव्य रूपे भक्तर समीप विद्यमान, भक्त के पास ही विद्यमान है, तखन अनित्य विषादेर विषय जर्जरित हया तुच्छ नश्वर विषयर जन्य ललायित हो छके न, समझ में आ रहा, आपको समझाता हो ना, खड़कवासी, ये तो बहुत सुंदर भाषा ना, समझ में आ जाता ना, ढंग से सुनेंगे सुन, बोलते तखन, बोले फिर अनित्य विषादेर विषय, जो अनित्य मतलब ज्यादा दिन रहेगा नहीं, ये जो सुख लेते हैं वो रहता थोड़ी रहेगा नहीं, आया तो गया, अति चंचल, और धन भी चंचल, आपका शरीर भी चंचल, वही सुख भोगते भोगते बूढ़ा होकर बीमार हो गया खत्म, और वो धन लाया था आप भी खर्च हो गया खैर चलिए, वो धन भी चंचल, वो सुख भी चंचल, और आपके शरीर भी जिसका भोगे वो भी चंचल अनित्य, इसलिए बोलते तखन इस अनित्य विषाद और विषय, विषाद तो जानते हैं टेंशन, विषाद का विष में जर्जरित होकर के ये तुच्छ नश्वर, तुच्छ नश्वर मतलब ज्यादा दिन टिकने नहीं वाला टेम्पररी, तुच्छ नश्वर विषय जन्य ललायत है वो कहना, उसके लिए इतने हंकरिंग क्यों, ललायत है कहना, जदि बोला जे असुर जोनिते हमारे जन्म हमारे कृप से नित्यानंद आनंद अनुभव करिब, बोला हम तो असुरकुल, असुरकुल में शुरू से कोई नियम फियम से मानते नहीं, सारे संस्कारहीन असुर है, ठीक नहीं हमारा सब, तो हम कैसे नित्यानंद को अनुभव करेंगे, ताई बोली थे जी, इसलिए बोल रहे हैं श्री कृष्ण कृपालाभ करिते सुख व असुख मनुष्य की पशु कोनरूप अभिजात्यर विचार नहीं। बोलते श्री कृष्ण के सुख पाने के लिए कोई अभिजात्यर विचार नहीं, ऐसा जन्म में जन्म होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसे कुल होना चाहिए, बोले ऐसा कोई विचार नहीं। तिनी जाति विशेष सभ्य नहीं, बोलते हूँ जाति विशेष का सभ्य नहीं। तिनी एकमात्र निर्मल चित्त रही उपास्य, निर्मल चित्त का उपास्य है, उनको जाति का उपास्य नहीं। तो उदाहरण देते हैं तृणावर्त प्रभृति, वो तो असुर थे। तृणावर्त प्रभृति असुर जो उनके साथ भिड़ने के लिए उनको मारने के लिए आए थे, बोले वो भी तर गए। शंखचूड़ प्रभृति जख्य, शंखचूड़ आदि जख्य, विभीषण इत्यादि राक्षस, विभीषण तो राक्षस ही था ना, राक्षस पुतनादि स्त्री, चारुण आदि शूद्र, चाणुर आदि जो मल्ल कहा था महाशूद्र, जामला अर्जुन आदि वन्य तरु, बोले पेड़ के जंगल के पेड़ जामला अर्जुन वो भी तर गया। जटायु आदि पक्षी, बक प्रभृति जटायु बक बकासुर भी पक्षी, केसी आदि घोड़ा, मारिच प्रभृति मृग, ओ मनेर गुणे कृष्ण कृपा लाभ करिया छे, बोले ये भगवत कृपा लाभ कर छे। केवल उनका मन भगवान में था, डर के मारे हो, भय के मारे हो, किसके मारे हो, मन था, इसलिए हरि कृपा लाभ कर गए वो लोग। उनका कौन सा जात की बात है। वजजुत्थ पाय देव असुर चख्य राक्षस पशु पखी एमन की स्थावर जंगम केह कृष्ण कृपा लाभ दे वंचित हननाय, कोई कृष्ण कृपा से वंचित नहीं हो सकता। अधिकंतु श्री भगवान एकमात्र निष्काम भक्ति ते जेरूपी तहन दान तपस्या यज्ञ व्रत प्रभृति किचित स्वरूपित है ना। बोलते हैं कि इससे अधिक क्या बताऊं, भगवान जिस प्रकार निष्काम भक्ति ते खुश होते हैं प्रीत हन, इस प्रकार कोई दान यज्ञ तपस्या व्रत नियम प्रभृति किसी में ऐसे खुश नहीं। ताई एकादश भक्ते भक्त उद्धव के तीन निज मुखे बोलिया छेन न साधयति मांग जोगो न सांख्यं धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो जथा भक्ति ममर्जिता। हे उद्धव मैं आपको खोल करके मेरा रहस्य बताता हूँ, क्या न साधयति मांग, मुझे किसी उपाय से साधन नहीं कर सकते। कौन सा न जोगो, जोगो के द्वारा नहीं, न सांख्यं सांख्य ज्ञान के द्वारा नहीं, न धर्मं धर्म ज्ञान के द्वारा नहीं, न स्वाध्याय स्वाध्याय करके नहीं, न तपो तप के द्वारा नहीं, न त्याग त्याग का नहीं, तो किसके द्वारा, जथा भक्ति मम उर्चिता, केवल मेरे भक्ति के द्वारा ही तेज हो जाता है भाव में प्रकट हो जाता है, बाकी किसी नहीं। हरे कृष्ण। तो इसलिए भक्ति की सारता को बताते हुए प्रहलाद महाराज ने बड़े अच्छे ढंग से, बहुत कम समय अभी पूरा नहीं किया, अभी और बाकी है बहुत, हमारा टाइम पूरा हो गया, उनका टाइम तो अभी था, तेरे बता के समझा दिया। असुर बालक इसे कन्विंस हो गए कि तुरंत भक्त बन गए, थोक में होलसेल में से भक्त बन गए, एक एक करके नहीं, एक साथ है ना। इसका कोई प्रश्न है? अच्छा, बोलते हैं कि भगवान स्वयं कहे हैं जब तक पाप निवृत्त, सुकृति की बात पहले पूछा, सुकृति मतलब सौभाग्य, भगवान सुकृति का बारे में अपना डेफिनेशन दिए, आप शायद भूल गए होंगे। हम लोग सुकृति किसको मानते हैं, सुकृति मतलब सुकृति अच्छा कर्म अच्छा भाग्य सौभाग्य, सुकृति को सौभाग्य कहते हैं, आप किसको मानते हैं सौभाग्यवान, नहीं मानते हाँ? जिनके पास बहुत सारे धन हो बड़े सौभाग्यवान, अच्छा कर्म है बड़े सुकृतिवान, बहुत सुंदर रूप है, बहुत सुंदर गुण है, बहुत सुंदर बड़े हैं, इसी को सौभाग्यवान मानते हैं। लेकिन भगवान स्वयं कृष्ण सुकृतिवान का डेफिनेशन देते हैं भगवद गीता में सातवां अध्याय में 16 नंबर श्लोक, ऐसा कुछ। चतुर्विधा भजते माम जना सुकृतिरोर्जुनः, ये चार प्रकार के जन जो सुकृतिवान है वो मेरा भजन करते हैं। वह गिनाते हैं कौन कौन, चार प्रकार के केवल सुकृतिवान, चार प्रकार के बोले ज्यादा नहीं, चार ही प्रकार के सुकृतिवान है। पहला नंबर वन सुकृतिवान कौन है, आर्त। आर्त का मतलब क्या जानते हैं, ढंग से बताओ, बचाओ बचाओ प्लीज, मर गया पिट रहे मुझे, बचाओ प्लीज हेल्प मी बचाओ, भाग रहा है तड़प तड़प करके गली गली में। आप देखेंगे बोलेंगे अरे कितनी सुकृतिवान, महासौभाग्यवान है, बोलेंगे ना। भगवान बोल रहे हैं कि नंबर वन सुकृतिवान है, सुकृति नंबर वन। अब दूसरे सुकृतिवान कौन है, अर्थार्थी, दो रुपया दे दो प्लीज हेल्प में, थोड़ा पैसा दे दो, थोड़ा धन दे दो, भिखारी की तरह मांग मांग कर झोली फैला कर जो घूम रहा है गली गली, उसको देखकर बोलेंगे आहा कितने बड़े सौभाग्यवान है रे, बोलेंगे कोई। भगवान बोलते हैं नंबर टू सुकृतिवान है। कैसे भगवान से बढ़कर कोई ज्ञानी है, वो स्वयं कहते हैं। आप उस तरह सुकृतिवान देखो भगवान क्या कहते हैं, सुकृतिवान कौन है, ऐसा सुकृतिवान होने के तो डरेगा, मुझे जरूरत नहीं बाबा, ऐसी स्थिति बोलते तो चार प्रकार सुकृतिवान मेरे भजन करते हैं, ये नंबर वन टू गिन दिए उन्होंने। अब सुकृति बोल रहा है ये सुकृति, तो फिर इसको ही सुकृति माने, तो सुकृति क्या ही है, वही अच्छा कर्म है, वही अच्छा भाग्य है। तो भगवान कैसे बोले, तो बड़े गड़बड़ लग रहा है, क्या रहस्य है उसका, रहस्य यही है भले ऐसे पीड़ित होकर के चित्कार करके भागे, दुखी होकर के भले ऐसे मांग करके हेल्प में करके भागे, लेकिन दूसरे किसी के पास नहीं गया, बैंक से लोन नहीं किया, उनके पास नहीं, उनके पास किसी का पास नहीं गया, मेरे पास आया, मेरे पास आना ही महासुकृति है। जेन तेन प्रकारेण मना कृष्ण निवेश है, सम हाउ और अदर किसी के पास न जाकर के मेरे पास आया, यही महासुकृति के फल है। हो गया सुकृति, तो इसलिए आप जब आ ही गए तो फिर सुकृति का चैप्टर ही खत्म हो गया। अब आया पाप की बात, भगवान गीता में कहते हैं जैसाम अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते दुन्दम, जिनका पाप के खाता नील हो गया, बैलेंस नील, पुण्य रहा तो ही मेरा भजन कर सकते हैं। अब पाप से निवृत्ति करना पड़ेगा तब जाकर भजन शुरू कर पाएंगे। पाप से निवृत्ति करने का क्या उपाय है आपको पता है, कोई उपाय है पाप से बचने के लिए, क्या उपाय है बताओ, उज्जैन कुंभ में जाकर डुबकी लगाऊं और ऐसी कई हो ना पाप से निवारण करने के, यज्ञ करूं, हाँ क्या क्या करूं, सबसे पावरफुल पाप निवारण उपाय क्या हो सकता है, हाँ सरदर्द है सर्वधर्मान के लिए बहुत लंबा टेस्ट बता दिया। एक सत्य घटना था, काशी की घटना है, वहाँ पे गंगा किनारे एक पंडित जी रहते थे, बहुत बड़े समर्पित राम भक्त थे, उनके शिष्य था, उनसे शिष्य उनके चला था। तो एक व्यक्ति गुरु तल्पगामी, उन्होंने जो चार प्रकार के मेन मेन पाप करके आया था, आप समझ रहे होंगे जो महापाप है, चार महापाप करके आया था, अंत में कुछ ऐसे खतरनाक पाप किया था, राजा ने उसको बुलाया कि सब घर से निकाल दिए, परिवार से बहिष्कार कर दिए, ये सब कर दिए, बड़े पागल होकर आया, आकर के कहीं से पूछ रहा था, कहीं कहीं उपाय बताए, ये करो ये करो वो करो, कर नहीं पा रहा था। अंत में कोई बोले जाओ, वो बड़े पंडित थे, बहुत बड़े पंडित, उनका पास जाओ, तो गंगा किनारे उनका कुटिया था, उनके पास आया। तो पंडित जी गुरु जी वो नहीं थे, तो कहीं गए थे बाहर में सामने, तो उनके शिष्य था घर में, आगे पहुँचा गिड़गिड़ा के बोला ऐसी ऐसी बात है, कुछ मुझे बता दीजिए, वो तो गुरु जी से ट्रेनिंग लिया था, बोला कोई बात नहीं, राम 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 बोल दीजिए हो जाएगा। तो बोला इतने मना बोलो हो जाएगा, अरे इतने सारे पाप, शत्रुविध महापाप, बोलो ना राम 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 जाओ गंगा नहा जाओ, हो गया। और राम 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 बोलकर गंगा नहाकर चले गए, बोलो मुक्त हो। तो कुछ समय बाद गुरु जी आए, वो आए, वो रास्ता में वो आदमी को मिले, वो पहचान नहीं था, देखे बड़े आनंद से जा रहे, निष्काम मुक्त हो चुका था, बाप से मुक्त हो चुका था, तो आकर के पूछे तो स्टूडेंट उनके शिष्य जो बताया कि गुरु जी खुश होंगे, तो उनको बताए बोले इसे इसे आया था, ये लिस्ट से पाप करके आया था, निदान में रोकर पूछे तो आप तो थे नहीं, अब ढूंढ रहा था, तो बताया ना, हम बता दिया, तो क्या बताए, हमारा बता कि राम 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 मरो मुक्त हो गया, जैसे सुने कि मैं उपाय बताया, एक तड़ाक करके थप्पड़ मारे से गाल में, बोले अभी तक यही सीखा, क्या समझा, तुमने यही सिखा, तुम सिखा दिया था ना गुरु जी मत भगवान नाम तो, तब फिर अभी तक समझ में नहीं आया, उनको समझ में नहीं आ रहा था, कुछ पिट रहे हैं क्यों, वह तो बताया आप बोल लेते ना, बोले अरे मूर्ख अभी देखो तीन बार क्यों बताया, हाई डोज, एक बार में हो जाता, एक बार में भर डोज है, तीन बार क्यों बता दिया, नाम अपराध कर दिया तुमने, इतने ओवरडोज क्यों किया, अभी तक नहीं समझा नाम के महत्व, तीन बार दे दिया हमको, अरे एक बार के कितना पाप किया, इस जन्म के पाप तो कुछ भी नहीं है, तीन बार क्यों कह दिया उसको, इसलिए थप्पड़ मारा उसको, है ना, तो इसलिए आप समझ लीजिए पाप निवारण करने के लिए हमारे पास क्या महास्त्र है, फिर सोचना क्या है पाप के लिए, हम तो, लेकिन आप बोलेंगे हमारा मन नहीं लग रहा है, क्योंकि हम मान नहीं रहे कि अब पाप से मुक्त हो करके, नाम उच्चारण मात्रेण नाम स्मरण मात्रेण सर्व पाप मोचयत, ये शास्त्र कहता है, स्मरण करने मात्र से, उच्चारण मात्र से सारे पाप निकल गया, लेकिन हम मानने से हम थोड़ी है, अब पापा के बैठ गए, तुम्हें मैं क्यों जाऊं, तुम छोड़ के तू तो मुझे आक्षेप कर ला, लो यही हाल हो रहा है, हमारा विश्वास नहीं है, इसी कारण है कि इसका मतलब ये पाप हटाने के लिए केवल विश्वास के साथ एक नाम हाइडोज, लेकिन हमारा विश्वास ही नहीं है इसलिए नहीं होगा, संशय है इसलिए बोलते संशय आत्मा विनश्यति, जिनका अंदर डाउट रहा वो तो मरेगा निश्चित, संशय आत्मा विनश्यति, और जो डाउट उठाकर फेंक दिया, कंफर्म एक्सेप्ट किया ही किया, भले कुछ भी हो जाए मैं मान लिया, सो मान लिया, ठाकुर जी की कसम कम से मान लिया, मान लिया तो वो ही उसका उद्धार कर डालेगा, विश्वास ही मिलाई वस्तु तर्क बहुत, आप लजिक लेंगे क्यों ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होगा, वैसे तर्क में संशय फंसेंगे, मरना ही सार होगा, कभी उद्धार नहीं हो सकता, लेकिन स्ट्रांग बिलीव में हो गया, अनेक ऐसे उदाहरण नहीं बोले, है ना, ना सब खत्म हो गया, पाप से मुक्त हो, सब खत्म, द्वंद्व और मोह से मुक्त हो गया, लेकिन हम क्यों नहीं मुक्त होते हैं, वो विश्वास तो अलग बात है, ये विश्वास जरूर है हमारे पास कि हम नाम करके पाप से मुक्त तो नहीं हो सकते हैं, ये विश्वास अच्छे तरह से कर लेते हैं, वो करते ही नाम लेते हैं, अरे करता है ऐसे थोड़ी हो जाता है, करके फिर शुरू करते नाम तब कैसे हो, ये तो विश्वास करते हैं, इसलिए कामयाब नहीं, तो इसलिए ये सब कुछ नहीं, मेन पॉइंट है विश्वास, इसी को इतने श्रद्धा, दृढ़ विश्वास, एक डोज में काम ओवर हो जाएगा, इसलिए तो चाटा मारे उसको, बोले तू इतना बड़ा दिन हाई डोज कम दे दिया उसको, ओवर डोज हो गया उसका, समझे ना, हरे कृष्ण, कुछ बोलना है उनको बोलना